चंद्रिका लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरणे मिचन्दमकलंकं, गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परूवणं ओच्छं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखे हुए ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड जो भाषा टीका है, मूल ग्रंथ गोमट सार उसकी यह भाषा टीका है। गोमट सार की रचना किसने की थी हमने देखा, याद है आपको? गोमट सार ग्रंथ किसने, कौन से मुनिराज ने उसकी ग्रंथ की रचना की है? हा? नहीं नहीं, वो षटखंडागम की रचना उन्होंने भूत बलि और हाँ, और ये इसकी किसने के लिए? नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार ग्रंथ लिखा और उसके ऊपर ये जो टीका है ढूंढारी भाषा में पंडित टोडरमल जी ने इसकी टीका की। अब यहाँ उसमें हम पृष्ठ संख्या 10 पर आ गए हैं। पीठिका जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन स्वयं पंडित जी ने लिखी है। देखो आजकल तो प्रस्तावना वगैरह लिखते हैं, परंतु उस जमाने में उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखा इसकी तो बात बता ही बताई है। आगे चलकर पूरे विषय का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अभी तो ये टीका एक लिखने के लिए वो क्यों प्रेरित हुए, उससे क्या लाभ है स्वयं को और दूसरे को, ये तो बात हो गई। अन्य अन्य जो पक्षपाती जीव है, प्रथमान योग का पक्षपाती क्या कहता है, शरणान योग का क्या कहता है, उसकी तो बात हमने देखी थी। अब यहाँ हम 10 पेज पर 10 पृष्ठ पर अब द्रव्यान योग का पक्षपाती कहता है कि पक्षपाती करते उसी का उसको पक्ष हो गया है और वो अन्य अनुयोगों का निषेध कर रहा है। तो क्या कह रहा है वो, इस शास्त्र में इस करणान योग के शास्त्र में जीव के गुणस्थानादि रूप विशेष, विशेष यानी डिटेल्स यानी उसके विस्तार से वर्णन और कर्म के विशेष इनका वर्णन है। इस ग्रंथ में जीवों के भी विशेष है, गुणस्थानादि यानी गुणस्थान है, मार्गणा स्थान है आदि, उसके भी डिटेल्स है और कर्म के भी बहुत विस्तार से चर्चा है। उसको जानने से अनेक विकल्प तरंग उठते हैं तथा कुछ सिद्धि नहीं है। क्या कहते हैं, ये विकल्प बहुत होते हैं, दुनियादारी करने में उसको कोई विकल्प नजर नहीं आते हैं। क्या कहता है कि ये इतनी ये इस गुणस्थान से वहां जाता है, कर्म के ऐसी इतनी प्रकृतियां होती है, उसमें ये बात होती है वो बात होती है, ये हमें ये इतने विकल्प नहीं चाहिए, ये बात उसके कहने में आ रही है। देखो इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना तथा स्व और पर का भेद विज्ञान करना, मैं जीव हूँ आत्मा हूँ और बाकी सब पुद्गल है भिन्न है मेरे से, इतना ही बस कर लो, ऐसा कहता है, इतना ही कार्यकारी है। अथवा इनके उपदेशक यानी इन्हीं की बात बताने वाले ऐसे जो अध्यात्म शास्त्र है जैसे समय सार आदि जो ग्रंथ है उनका ही अभ्यास करना योग्य है। तो समय सार ही पढ़ो और ये करणान योग के ग्रंथ मत पढ़ो, ऐसा कहने वाला ये जीव है। अभी उसको उत्तर देते हैं, उसको कहते हैं अभी और एक उसके उपमा दी, एक पदवी डिग्री दे, क्यों? हे सूक्ष्माभास बुद्धि, सूक्ष्म का आभास हो गया है उसको, लग रहा है कि मैं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बात जान रहा हूँ या चर्चा कर रहा हूँ। तूने कहा वह सत्य, कभी सामने वाले के पहले हाँ तूने कहा ना वो सत्य क्या है कि आत्मा में ही कायम रहना लीन रहना तो योग्य है ही और भेद विज्ञान भी निरंतर भाना योग्य है, परंतु अपनी अवस्था देखना, क्योंकि जो पक्षपाती है वो कौन से गुणस्थान में होना चाहिए, पक्षपाती की बात है। पहला तो कहते अपनी अवस्था देखना, यदि स्वरूपानुभव में यानी स्वरूप के अनुभव में यानी शुद्धोपयोग में वहां भेद विज्ञान में वहां का अर्थ होता है अथवा या और भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करने, यानी ये जो बात बताइए ये निरंतर उसका उपयोग शुद्धोपयोग में रहता है तो ठीक है, अन्य विकल्पों की कोई जरूरत है ही नहीं है। वहां ही वहां यानी अपने स्वरूप में स्वरूपानंद यानी स्वरूप का आनंद यानी आत्मा से उत्पन्न हुआ जो अतीन्द्रिय आनंद उसका सुधारस, सुधा यानी अमृत यानी आत्मिक आनंद रूपी अमृत का जो रस है उसका स्वादी होकर उसका आस्वादी होकर यानी उसी को ही भोगते भोगते संतुष्ट होना यानी वहां संतुष्ट रीति से आनंदित होकर रह जाना। परंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता नहीं। अभी जो सम्यक दृष्टि भी है ये तो पक्षपाती वाला तो मिथ्या दृष्टि हो गया, परंतु जो सम्यक दृष्टि भी है चौथे पांचवे गुणस्थान वाला भी है उसका उपयोग निरंतर शुद्ध उपयोग में नहीं टिक सकता, क्योंकि अभी वो उसकी भूमिका ही ऐसी है।
देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमें तो ये रफली बात समझनी है। यहाँ हमने देखा था आगम के आधार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है उसके तो एक बार अनुभव होने के बाद अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर दोबारा उसको आत्मानुभव होगा तो उसका सम्यक तो टिका रहेगा। ऐसे जो कर्मों के वासना काल की अपेक्षा से यह निर्णय तक हम पहुंच सकते हैं। अब कह रहे हैं पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जो है वह भी अंदाजन 15 दिन के अंदर ही अंदर दोबारा आत्मानुभव करता है, और इस बात को हमने देखा था कि सामायिक आदि जो प्रतिमा होती है दिन में 3 बार वह स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करते हैं और उसमें निश्चित रूप से यशस्वी भी होते हैं, भले आज नहीं हुए कल नहीं हुए, दिन में 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो कभी तो होंगे, इस तरह हम देख रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो मुनिराज जो लिख रहे हैं क्या कर्णानियोग का शास्त्र, तो वे भी लिख रहे हैं तो वो भी अपने स्वरूप में कायम नहीं टिके, कायम टिकेंगे तो क्या होगा, कायम टिके रहेंगे तो क्या होगा, केवल ज्ञान होगा, बहुत अच्छा, और आगे जाके मोक्ष होगा। तो यहाँ क्या कह रहे देखो
चौथी लाइन में,
हाँ
निचली अवस्था में,
परंतु निचली अवस्था में वहां यानी स्वरूप में निरंतर उपयोग नहीं रहता, रहता नहीं। हाँ। अब आगे क्या बताते हैं आप पढ़ेंगे,
उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है यानी उपयोग है वो बार बार पलटता है, अन्य अन्य गेयों को विषय बनाता है।
ये बात समझ में नहीं है आपकी,
क्षोभषम जो ज्ञान है। हाँ। तो क्षोभषम ज्ञान की ये विशेषता है कि एक ही वस्तु को जानते रहा तो अधिक टाइम नहीं रहता वहां पर, अन्य 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 अवलंबन लेता है। जैसे भोजन की थाली है सामने तो खाली लड्डू ही खाते हो ना, क्या खाते हो, तो बीच में वो अचार खाने का भी मन होता है, फिर चटनी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, अनेक अवलंबन को चाहते हैं। क्या खाली अकेली रोटी और दाल से पेट नहीं भरता, वहां भी अनेक व्यंजन चाहिए। तो यहाँ तो उपयोग ऐसा है, क्षोभषम ज्ञानी का उपयोग, केवल ज्ञानी के उपयोग तो त्रिकाल वो सभी उपयोग रूप ही है, उसमें कोई पलटाने का या पलटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है इसलिए जिस काल में वहां उपयोग नहीं लगता, देखो कोई हमारी फेवरेट भी चीज है फिर भी अधिक काल वहां एक ही विषय को जानते रहे तो हमें ऐसा लगता है भी दूसरा कुछ जान लो, ये सहज है ना। वैसे यहाँ कहते हैं जिस काल में वहां उपयोग नहीं लगता यानी अपने स्वरूप में जिस काल में उपयोग नहीं रखता है तब गुणस्थानादि विशेष जानने का अभ्यास करना, क्योंकि वहां मन रमता है, वहां तो इतना उपयोग छोड़ता है कि एक घंटा डेढ़ घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो ये अनेक अवलंब, क्योंकि नई और सत्य बात जानने को मिल रही है। हम तो असत्य जो कोई कथाएं चलती है विकथाएं टीवी पर, उसमें भी नया नया कुछ जानने को मिलता है ना, तो वहां उपयोग छोड़ता है अपना। और ये तो हम कैसी बात चल रही जान रहे, जो सत्य बात है जो जिनेन्द्र भगवान ने जानकर बताई है और उसको, और ये सारी बातें होती है और अपना भी उससे कंसर्न है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कोई दूसरे प्लैनेट के ऊपर की बात चल रही है। हमारे ही पर्यायों में ये गुणस्थान अभी है और होंगे तो पूरा ही मोक्ष मार्ग हमारे ख्याल में आ जाएगा। इसलिए कहते विशेष जानने का अभ्यास करना, ये प्रेरणा दे रहे हमें। पुनश्च तूने कहा कि ये द्रव्यान योग का पक्षपाती फिर दूसरा पॉइंट निकाल रहा है, अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना वह योग्य ही है। यानी उसने जो कहा था ऊपर लिखा था ना, इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र उनका ही अभ्यास करना योग्य है, ऐसा जो उसने कहा था पॉइंट दिया था, तो उसके लिए कहते कि तूने जो ऐसा कहा था कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना वह योग्य ही है, नहीं करना वो बात नहीं है, करना जरूर, क्योंकि द्रव्यान योग तो मुख्य है तो उसका तो अभ्यास करना, परंतु वहां भेद ज्ञान करने के लिए, भेद ज्ञान करना है ने क्या करना है, स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानना, और उसका जो दोनों में जो भेद है वो बारंबार उसकी चिंतन करना। तो उसके लिए स्व पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है, स्व और पर, ये तो पर पुद्गल सब, ये सारा पर है, शरीर पर है, ये सारे अन्य चीजें पर है, इतना ही सामान्य से कथन आता है। और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता। ये सामान्य और विशेष क्या है, सामान्य ने स्थूल कथन और विशेष है ने इन डिटेल, जो इन डिटेल जानेंगे तो ही वो स्व और पर का स्वरूप और अधिक अच्छी तरह से ख्याल में आएगा। हम अन्यत्र ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु उसकी बात यहां नहीं है। सामान्य ने मोटे तौर पर स्थूल कथन और विशेष है ने इन डिटेल कथन। इसलिए जीव के और कर्म के विशेष, विशेष है ने उनके डिटेल्स, उनका विस्तार से वर्णन अच्छी तरह जानने से ही स्व पर का जानना स्पष्ट होता है। हम तो पहले कहते हैं कर्म भिन्न है और मैं भिन्न हूं, फिर भी जब उनके डिटेल्स जानेंगे तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट रीति से भाषित होता है, मैं तो भिन्न ही हूं, मैं तो ज्ञानमय हूं, और ये जो सारी शरीर की रचना है, कर्म के उदय में जो कोई बातें बन रही है, ये सारे मेरे से भिन्न है। हाँ, कहां पर, हाँ सामान्य और विशेष में यहां द्रव्य और पर्याय नहीं लेना है। हाँ सामान्य ने हम जैसे कैसे कहते हैं कि आज घर में मिठाई बनी है, ये सामान्य कथन हुआ। हाँ यानी मिठाई, अब मिठाई कैन बी एनीथिंग, तो फिर रसगुल्ला बनाया है, कोई भी नाम ले लो, तो वो क्या हुआ, वो उसका स्पेसिफिक बात हुई ना, विशेष हुआ उसका। ऐसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कि लौकिक कोई पढ़ाई कर रहे हैं कि ये स्वाध्याय कर रहे, तो उसके डिटेल में जाएंगे तो हुआ विशेष। हमने MBBS पास की तो ये हमारा सामान्य नॉलेज हुआ मेडिकल संबंध, फिर भी उसमें हमने स्पेशलाइजेशन किया, क्यों, हमने उसके डिटेल्स जाने, ये हो गया विशेष। तो यहां कहते हैं कि जीव के भी और कर्म के भी विशेष यानी डिटेल्स जानने से स्व का और पर का दोनों का ही स्पष्ट रूप से ख्याल में आता है, उसका ज्ञान हो जाता है। उन विशेषों को जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि इसका नाम है जीव कांड, इसमें जीव के भी विशेष है ही है, कर्म के भी विस्तार से वर्णन है, शरीर के भी परमाणु एक समय में कितना लेता है कैसे छोड़ता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो ऐसा भाषित होगा, अरे ये तो क्या, यानी उसकी फुल इमेज अपने मन में तैयार होती है, तो वी कैन इमेजिन, और उसमें भी स्व कौन है और पर कौन है ये अच्छी तरह से भाषित होने लगता है। तो इस शास्त्र का अभ्यास, क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान है, यहाँ भी सामान्य शास्त्र यानी जिस शास्त्र में स्थूल कथन है उसकी अपेक्षा जिन शास्त्रों में डिटेल वर्णन है वो बलवान है ने वो अधिक कार्यकारी है, वही कहा है। ये संस्कृत यहाँ एक बताते हैं, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य शास्त्रतः यानी खरेखर सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र जो है वे बलवान होते हैं। वहां वह कहता है कि अब सामने वाला द्रव्यान योग का पक्षपाती कह रहा है, अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थानादि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव ना उपादेय कहा है। क्या कहते हैं, समय सार में बातें आती है, मैं गुणस्थान रूप नहीं हूँ, मैं मार्गणास्थान रूप नहीं हूँ, मैं वर्ग नहीं वर्गणा नहीं हूँ, स्पर्धक नहीं, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब बातें, मैं राग द्वेष रूप नहीं हूँ, है ना। तो कहते हैं मैं उस रूप नहीं हूँ तो उसको क्यों जानना। क्या आप कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र में यानी समय सार आदि ग्रंथों में क्या बताया है, गुणस्थानादि विशेष। अभी यहाँ जो गुणस्थानादि विशेष कहा है यहाँ पर्याय समझना, तो गुणस्थानादि पर्यायों से रहित शुद्ध स्वरूप जिसको हम त्रिकाली स्वरूप कहते हैं उसका अनुभव करना चाहिए, उसको उपादेय यानी करने योग्य, अनुभव करने योग्य कहा है। यहाँ गुणस्थानादि सहित जीव का वर्णन है। समय सार में क्या कहा, ये गुणस्थानादि जो पर्याय में है, मार्गणा है, गुणस्थान है, उस रूप में नहीं हूँ मैं, तो त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ और उसी का अनुभव करना योग्य है। और यहाँ करना नियोग में तो गुणस्थानों के डिटेल्स बताए, मार्गणास्थानों के बताए, कर्म के बताए, इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरोध भासित होता है, इसलिए इसको लगता है ये विरोधी कोई कथन है और इसलिए इसका निषेध ही करता है, ये इसको मत जानो, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा भी कहने वाले हैं, उसको कहते हैं। अब उसको समझाते हैं, नए दो प्रकार के हैं। ये नए क्या होता है, हाँ ज्ञान के अंश, कैसा अंश, हाँ परंतु वो क्या करता है वो अंश, हाँ बोलो नए चक्र वाले, हाँ बहुत अच्छा, पूरी वस्तु को किसी एक एंगल से देखने वाला है, पूरी वस्तु उसको उस रूप दिख रही है, ये नए का कार्य है। जैसे हमने जीव को एक इंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, ऐसा देखा तो उसको तो संयोग की अपेक्षा देखा, वहां तो नए के ना, वो तो परद्रव्य के साथ संयोग रूप से देखा। और उसी जीव को अगर हम कहेंगे ये उपयोग स्वरूप जीव है, दो भिन्न बातें हो गई ना। या जैसे हमेशा वो सीता का उदाहरण दे, सीता माँ है के बेटी है के बहन है के पत्नी है, बोलो सब नहीं चलेगा। हाँ तो हम कहेंगे राम की दृष्टि से, हाँ राम नहीं लगाएंगे वहां पर। राम की दृष्टि से वो पत्नी कितनी परसेंट, 100%, और लव कुश की अपेक्षा 100% माँ, वो भामंडल कहेगा ये 100% बहन है, और जनक क्या कहेगा, ये 100% पुत्री है। तो इसी तरह से ये नए की बात है। नए दो प्रकार के हैं, एक निश्चय एक व्यवहार। वहां निश्चय नए से जीव का स्वरूप गुणस्थानादि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है। ये अभेद वस्तु हमें वहां सब पर्यायों को गौण करके, ये पर्याय से रहित जब कहते हैं तो हम अभेद की बात करते हैं। ये हम बहुत बार ये उदाहरण हमने देखा है कि भारत एक अखंड देश है के टुकड़े वाला है, यथार्थ में क्या है, एक अखंड है, फिर भी उसको वो भारत कैसा है, उसमें क्या क्या विविधता है, तो उसमें कितने वो प्रांत है, वो सारे हम उसके महाराष्ट्र है, गुजरात है, वो दिल्ली है, केरला है, तमिलनाडु, ये सब उसके हम विभाग करके बतलाते हैं। ये हुए भेद, कैसा है समझने के लिए भेद कार्यकारी है, परंतु समझ में आया अभी हमने पूरा भारत कैसा है देख लिया, अब हमें भारत एक ऐसा उसका हमको ख्याल में लेना है, ज्ञान में लेना है, तो हम वो अभेद दृष्टि से देखेंगे। अब अभेद दृष्टि में आपको कितने भेद दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं, क्योंकि वो दृष्टि का कमाल है, वो नए का कमाल है। वैसे जब हम अभेद आत्मा की बात करते हैं तभी हमारे गुरुस्थान आदि भेद उसमें नहीं दिखते, नहीं दिखते तो उसमें है ही नहीं क्या, उस दृष्टि में देखने पर नहीं है ऐसा भी कहेंगे, दृष्टि की बात है। तो उन सभी पर्यायों को और उसके विशेषों को गौण करके हम अभेद की दृष्टि से वस्तु को देखते हैं, उसको कहेंगे निश्चय नय, उसी को कहा है शुद्ध नय। तो क्या कहते हैं, निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र है। यहाँ विशेष रहित यानी भेद रहित, और व्यवहार नय से, अब ये व्यवहार नय क्या करेगा, उसी वस्तु को भेद करके समझाएगा। गुणस्थानादि विशेषों से संयुक्त अनेक प्रकार का है, ये अनेक प्रकार एक ही वस्तु में अनेक प्रकार अलग अलग दिखाने वाला ये व्यवहार ने है। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवते हैं, उनको तो वहां शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय ने वही कार्यकारी है, यानी आत्मा का जो अनुभव कर रहे, कैसे आत्मा का अभेद अखंड एक त्रिकाली, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले को वही उपादेय है, उसी को जानते रहना चाहिए। पुनश्च जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए है, जिसको अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, वहां का अर्थ है, और जो दूसरे भी है, कैसे स्वानुभव दशा से छूट कर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए, आत्मा के अनुभवी है, सम्य दृष्टि है, परंतु अभी शुद्ध उपयोग में नहीं है, अभी हम आपके जैसे हाँ शुभ उपयोग में है या अशुभ उपयोग में भी चले जाएं, या तो शुभों की बात करेंगे। तो कहते जो सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव ऊपर कहा था कौन सा, अभेद, अभेद को शुद्ध कहा, और यहाँ भेदों को विकल्प वाली दशा को अशुद्ध कहा, उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है। जब आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं उस समय क्या करेंगे, तो हम गुणस्थानों की डिटेल जानेंगे, कर्मों की डिटेल जानेंगे, मार्गणास्थानों को जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। उसमें जिसने अनुभव किया है उसकी तो दृढ़ता और बढ़ेगी, और जिसने नहीं किया है उसका और वो क्लैरिटी बढ़ेगी, तभी तो जाके उसके भेद ज्ञान में और आत्मानुभव करने में उसको वो कार्यकारी होगा। वही आत्मख्याति नामक अध्यात्म शास्त्र में कहा है, ये आत्मख्याति, विजय बेन आत्मख्याति क्या है, हाँ टीका है, कौन से शास्त्र पर और किसने लिखी, समय सार की टीका आत्मख्याति है, किसने लिखी है, अमृत चंद्र जय, बहुत अच्छा, अमृत चंद्राचार्य ने समय सार ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी। कुनकुंदाचार्य तो 2000 साल पहले हुए थे, और अमृत चंद्राचार्य उनके पश्चात 1000 साल के बाद, फिर भी उसमें से माल माल निकाल कर उन्होंने आत्मख्याति नाम की वहां टीका लिखी। तो उसमें कहा है,
और उनके बाद 1000 साल के बाद तकरीबन गुरुदेव ने उस बात को और खोल खोल के समझाया।
ये समयसार की 12वीं गाथा में जो कहा है, ये तो अध्यात्म शास्त्र में तो ठीक है, मगर ये तो मूल गाथा उन्होंने दी है, ये तो टीका की बात नहीं पर मूल गाथा की बात बताइए। हाँ देसो है उसमें, हाँ सूत्र का सर, यानी समय सार वाला स्व, शुद्धो शुद्धा देशो नादो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदो पुण जे दो अपरमेठिदा भावे। यह ऐसा कहते हैं कि परम भाव दर्शी ही, परम भाव को बताने वालों के उन्होंने क्या बताया है कि जो शुद्ध नय है वो जानने लायक है, और जो व्यवहार जो है, व्यवहार ने जाने लो प्रयोजन माने से गुजराती में कहा है, यानी वो भी जानने योग्य है। किसके लिए? जो अपरम भाव में स्थित है, जो अभी शुद्धोपयोग में नहीं है, उनके लिए व्यवहार ने जानने योग्य है। इस सूत्र के व्याख्यान का अर्थ विचार कर देखना। पुनश्च सुनो, अब ये द्रव्यानियोगी वाले के बता रहे हैं, पुनश्च सुनो, तुम्हारे परिणाम तो स्वरूपानुभव दशा में तो प्रवर्तते नहीं, और विकल्प जानकर गुणस्थानादि भेदों का विचार न करोगे तो तुम इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर, क्या कहना चाहते हैं? एक तो स्वरूप के अनुभव की दशा है ही नहीं है, स्वरूपानुभव की दशा है ही नहीं है, और गुणस्थानों को जानने का निषेध कर रहे हो। क्यों? विकल्प होते हैं, तो स्वरूप का अनुभव भी नहीं है और ये विकल्प जानकर करणानियोग को भी छोड़ दिया, तो ये भी गया और वो भी गया। मराठी में एक कहावत है, एक बच्चा तेल और घी दोनों लाने को लिए उसको बताया था माँ ने, तो पहले के जमाने में वो धूप खेने का एक ऐसा मिट्टी का पात्र आता था, देखा है कभी? देखा है कि नहीं? मराठी में उसको धुपाट न कहते, ये दो कटोरी जैसे, ऊपर एक कटोरी नीचे ऐसी कटोरी होती है और उसके एक हैंडल होता है। तो वो लेके गया, वो तो दुकानदार ने पूछा, तेल दियो किसमें दियो? तो उसमें डालो ऊपर, इसमें डालो। अब घी कहाँ डालो? तो उसने दूसरी कटोरी ऊपर कर दी, इसमें डालो। तो उसको कहते, तेल भी गया और वो तूप यानी घी भी गया और हाथ में धुपाट ना है ऐसा कहते। तो ऐसे क्या कहते, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर अशुभोपयोग में ही प्रवर्तन करोगे, वहां तुम्हारा बुरा होगा, क्योंकि ना स्वरूप के अनुभव में स्थित है और ना ही करणानियोग के अभ्यास में स्थित है, तो क्या कर रहा है? अन्य विकताओं में लगा रहा है। पुनश्च सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्राभासों में, क्या लिखा है वहां पर? शास्त्राभास कहा, शास्त्राभ्यास नहीं कहा, आभास, यानी शास्त्र जैसे लगते मगर वो सच्चे शास्त्र नहीं है। तो वेदांत आदि शास्त्राभासों में, इसलिए वो ब्रैकेट में ये तो मैंने डाला है क्योंकि वो तो ऐसे पढ़कर आगे बढ़ते ना, शास्त्र नहीं, शास्त्र का आभास है ये, जो जिसको कहते हैं अलग फॉन्ट में लिखा है ना, इसको इटैलिक कहते हैं, इसे तिरछा लिखा है, जहां जहां ब्रैकेट में तिरछा लिखा है वो मूल ग्रंथ में नहीं था, वो समझने के लिए कहीं कहीं वहां डाला है। शास्त्राभासों में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहा है, वेदांति है या जो ये मनन आदि क्लास चलते हैं ना वैष्णवों के भी, उनके भी ग्रंथ है, तो जो शुद्ध नहीं से कथन है जिनवाणी में, वो भी कहते आत्मा शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, किसी का कुछ करने वाला नहीं है, कभी मरता नहीं है, अविनाशी है। हमें लगता है हमारे भी समय सार में ऐसा ही लिखा है और यहाँ भी ऐसा ही लिखा है, परंतु वो सर्वथा वैसा मानते हैं, उसमें गुणस्थान आदि जो कोई डिटेल्स है वो तो कुछ है ही नहीं, उसमें पर्याय को वो मानते ही नहीं है। तो कहते वहां विशेष को जाने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे हो? क्या कहते हैं? विशेष को जाने बिना, उन्होंने भी कहा आत्मा शुद्ध बुद्ध है और हमने भी कहा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, तो शुद्ध बुद्ध है तो अभी दुखी क्यों हो? तो अभी पर्याय में ये कोई मिथ्या तुगुण स्थान चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, उसके कारण जीव दुखी है, तो अगर उसके डिटेल्स नहीं जानेंगे, उसके पर्यायों को नहीं जानेंगे, सर्वथा उसका निषेध करेंगे, तो पर्याय है ही नहीं ना, तो ना बंध होगा ना मोक्ष होगा। पर्याय का ही निषेध करते हो तो बंध वाली पर्याय भी नहीं ठहरेगी और मोक्ष वाली भी पर्याय नहीं ठहरेगी। तो पर्याय को हम गौण करके वहां शुद्ध नहीं के लिए उसका हम गौण करके वहां नहीं है कह सकते हैं, परंतु सर्वथा नहीं कहेंगे तो वो नय भी नहीं होगा, वो कुनय होगा, दुर्नय हो जाएगा। इसलिए गुणस्थान आदि विशेष जानने पर जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है। यह अवस्थाएं ने पर्याय, जीवों के जो शुद्ध पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय हैं और मिश्र पर्याय हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करता है, यानी जो सही है उसको अंगीकार करता है, नहीं उसको वो निर्णय पूर्वक जानता है। पुनश्च सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है। ये जो विशेष जान रहे हैं, तो ज्ञान का ये विकास है कि ज्ञान की अवनति है, हीनता की ओर जा रहे हैं। क्या है, गुणस्थानों को हम जानेंगे तो ज्ञान का विकास हुआ है क्या, कुछ आपके कुछ फेल्यूर हुआ क्या, हुआ क्या, विकास है ना, क्योंकि हम सही जान रहे हैं। तो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होता है। जो हमने समय सारादि ग्रंथों में पढ़ा है और श्रद्धान किया है, वो और अधिक दृढ़ होता है। जैसे सम्यक्त्व है, वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परम अवगाढ़ नाम पाता है। जो सम्यक दर्शन है, उसके जो हमने अलग अलग भेद देखे थे, तो उसको परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, फिर भी परम अवगाढ़ क्यों कहा वहां पर? क्योंकि केवल ज्ञान है तो हरेक गुण की भी पर्याय को जानेगा। पहले तो जाना ही, मैं कौन हूं, पर कौन है, तो सब उसने जान लिया है और उसका आत्मा का अनुभव भी किया है। परंतु वो अनुभव है, वो अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा का आनंद का वेदन किया है, परंतु ये श्रद्धा गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है, ऐसा उसने तो नहीं जाना है। ये आत्मा के प्रदेश है, ये असंख्यात है, ऐसा तो नहीं जाना है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, ऐसे उसने आगम से जाना है, परंतु उसके प्रदेशों को तो उसने प्रत्यक्ष जाना नहीं है। केवल ज्ञानी होने पर यह सारा प्रत्यक्ष जानने में आता है, तो उसके सम्यक्त्व का नाम भी परम अवगाढ़ सम्यक्त्व है। इसलिए विशेष जानना, ऐसे ही खाली स्व और पर कहने से कुछ नहीं है, मैं कर्म से भिन्न हूं कहने से कुछ नहीं होगा। कर्म के भी डिटेल्स और जीव के भी डिटेल्स जानने से इनके जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, वो अधिक स्पष्ट प्रतिभासित हो जाने लगेगा। तो इसलिए कहते आत्मगुण विशेष प्रकट होगा। पुनश्च वह कहता है, आपने कहा वह सत्य है, परंतु कर्णानुयोग के विशेष जानने पर भी, कर्णानुयोग से यानी कर्णानुयोग में से गुणस्थान आदि विशेष जानने पर भी, द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान के बिना संसार ही रहता है। अब इसको कौन याद आ गया? क्योंकि उसने बहुत बार सुना है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, इतना पढ़ा, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास किया है और द्रव्यलिंग धारण किया है, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो उसका उदाहरण, उसका दृष्टांत दे रहा है। और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले तिर्यंचादिक को अल्प श्रद्धान से भी सम्यक तो होता है। यानी द्रव्यलिंगी मुनि ने तो घर बार छोड़ा, मुनि दीक्षा धारण की, इतना अभ्यास किया, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, और तिर्यंचों को भी अनुभव हो गया, यानी उनके भी हो सकता है। और तुषमास भिन्न, इसको ऐसे सारे दृष्टांत याद आ रहे हैं जिसने बिना कुछ मेहनत किए, इसको मेहनत लगती है ये, क्योंकि ये मेहनत तो है नहीं, उल्टा आनंद आता है इसको पढ़ने में। तुषमास भिन्न, इतने मात्र श्रद्धान से शिवभूति मुनि मुक्त हुए। क्या कहते हैं ये तुषमास भिन्न की स्टोरी मालूम है आपको? नहीं सुने? पहले एक बार बताई थे, ये शिवभूति नामक एक मुनि हुए थे। ज्यादा क्षोभम ज्ञान नहीं था, ज्ञान का उगाड़ इतना नहीं था, ये जल्दी भूल जाते हैं। ये कोई प्रयोजनभूत तत्वों में भूल नहीं थी उनकी, फिर भी शास्त्र की बहुत बातें वो ख्याल में नहीं आती थी। तो उनके गुरु ने, आचार्य ने कहा, मातुष मारुष, यानी राग मत करो, द्वेष मत करो, मातुष मारुष। तो मातुष मारुष ऐसे वो घूकते घूकते चले, याद करते करते, और फिर भूल गए मैं क्या बोल रहा था, वो याद नहीं आ रहे थे शब्द कौन से थे। तो वहां देखा था एक भाई वो अड़द की दाल जो है वो कूट रहे थे, तो उसके छिलके है थे ना, हाँ, तो किसी दूसरे भाई उसको पूछ रही, तू तो क्या कर रही है? तो उसने, मैं तुषार मास भिन्न कर रही हूँ, यानी वो दाल और उसका वो ऊपर का फोतरा जो है छिलका, उसको मैं भिन्न कर रही हूँ। तो उसने, अरे वो तुष मास भिन्न, तुष मास भिन्न, ऐसे करके मैं भिन्न हूँ और ये बाकी पर भिन्न है, इस तरह से उसी विचारों में चढ़कर वो तो केवल ज्ञानी हुए आगे चलकर।
देखो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना, यहाँ भले ही ऐसा कहा है और हर लोग ऐसा ही उदाहरण देते हैं कि ज्ञान का उगाड़ कम होगा फिर भी अपने स्वरूप को जानेगा तो उसके भी मोक्ष होता है। यहाँ लिखा ना श्रद्धा से शिवभूति मुनि मुक्त हुए, लेकिन हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है कि जो कोई गुणस्थान में ऊपर के चढ़ते हैं उन जीवों को वो कितना 12 अंग का ज्ञान होता है, कितना होता है?
यानी वो उसको पूर्वविद कहा,
पूर्वविद का यानी पूरे पूरे उनका ज्ञान होता
है। वहाँ ऐसा है कि क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव पूर्वों के जानने वाले होते हैं, यानी चतुर्दश पूर्वी यानी 14 पूर्वों को जानने वाले या दस पूर्वी 10 पूर्वों को जानने वाले, ऐसा नियम है। एक तो उत्तम सहनन वाले होने चाहिए और दूसरे पूर्वविद होने चाहिए, क्योंकि शुक्ल ध्यान के जो आद्य दो है आद्य च पूर्वविद ऐसा उसमें सूत्र है। आद्य दो यानी कौन से? शुक्ल ध्यान अभी अभी हमने देखे थे, दो हमने तो चार देखे। हाँ, पहला शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक्त्व वितर्क विचार, और दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। ये जो है शुक्ल ध्यान ये पूर्वविदों को होता है ऐसा सूत्र है, और इसीलिए इसके लिए कहीं कहीं शिवभूति का भी उदाहरण देते कि ये इसलिए अपवाद है करके, परंतु ये पूर्वविदों को होता है ऐसे बहुत से ग्रंथों में आया हुआ।
नहीं, यहाँ तो ऐसा हाँ। कहने का प्रयोजन ये है, कथाओं में तो ऐसा ही कहेंगे, जैसे हम आप सिनेमा देखते हैं और उसमें 3 घंटे में 3 पीढ़ी दिखाते हैं, वो कभी खाना खाया कभी सो गया कुछ मालूम नहीं, लेकिन फटाफट फटाफट बड़ा भी हो गया उसका बाप भी हो गया उसका ऐसा, वैसे कथाओं में बीच वाले जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताएंगे। तो भाई उनके इतना ज्ञान का ओछा उगाड़ था फिर भी वो मुक्त हुए, तो उसी को पकड़कर हम उससे डिसएडवांटेज लेना चाहते हैं। अरे काय को जास्ती पढ़ने का, ये भी हो गए, अरे वो 3 इंच भी गया, मतलब सम्यक दर्शन लिया उसने, इस तरह से हमारा ध्यान किधर जाता है जो अपने को कन्वीनियंट लगे उस बात पर, इसलिए इसका विशेष खुलासा अभी किया।
यानी उनके ही ऐसे ध्यान अवस्था में उनके भी ज्ञान का विकास होता चला जाता है, ये बात कहना चाहते हैं। तो ये तो शंकाकार है ना, तो उसने ऐसे सारे उदाहरण चुने, इसलिए हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन होता नहीं। प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे, यानी वो भी मेहरबानी कर रहे कि जितना आवश्यक है उतना ही अभ्यास करेंगे। कभी ऐसा नहीं कहता कि जितना आवश्यक उतना ही पैसा कमाऊंगा और रखूंगा, जितना आवश्यक है उतने ही 2 रोटी से काम चलेगा, बाकी कोई जो रोज का चेंज की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं कहता। 2 जोड़ कपड़े है, एक आज एक कल, धोके पहन सकते हैं ना, तो वहां तो नहीं चलेगा। अरे कपड़े तो क्या, जूते भी कितने कितने जोड़ जूते लाएगा। तो और ये जब शास्त्र पढ़ने की बात आती है तो प्रयोजन से जितना काम चले उतना ही पढ़ूंगा, ये बात वो कह रहा है। अभी पंडित जी कहते हैं, इसको कहते हैं द्रव्यलिंगी जैसे कर्णानुयोग के विशेष जानते हैं वैसे अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी तो उनके होता है। ये द्रव्यलिंगी का जो उदाहरण दिया द्रव्यानुयोग के पक्षपाती ने, वो क्या अकेले कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ते होंगे? क्या द्रव्यलिंगी मुनि समय सारादि पढ़ते नहीं है? हाँ जरूर पढ़े उन्होंने, परंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करते हैं, उसका मर्म नहीं पकड़ पाते। अयथार्थ साधन करते हैं नहीं क्या, ये तो राग से जो भिन्नता है वो ख्याल में नहीं आती उनके, यानी वो क्रिया करके ही शरीर की क्रिया और राग भाव जो शुभ राग है मैं उसका करता हूं, ऐसे उनकी पकड़ जो है वो छूट नहीं रही। तो शास्त्र क्या करे, शास्त्र में तो सारा मर्म बता दिया, कौन से अनुयोग से वितरागता की प्राप्ति होती है? चारों अनुयोगों से। नहीं तो केवल ज्ञानी को और मुनियों को टाइम पास नहीं होता था इसलिए कर्णानुयोग बताए और लिखे क्या, क्या किया क्या उन्होंने? शास्त्र में तो परस्पर विरोध है नहीं, जिनवानी उसी को कहते हैं, सत्शास्त्र उसी को कहते हैं जहां कोई परस्पर पूर्वापर विरोध नहीं होता। हमने रत्नगण शावकाचार में 6 उसके विशेषण देखे थे सत्शास्त्र के, जो अरिहंतों ने बताया है, जिसमें पूर्वापर कहीं पर विरोध नहीं है, आदि आदि अनेक बातें बताए उसमें, कैसे वह कहते हैं ये विरोध कैसे नहीं है, वो बात यहां बताते हैं। कर्णान योग शास्त्रों में भी तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी, दोनों में एक बात चल रही, रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न होते हैं कहा। कर्मों के निमित्त से यानी पुराने कर्मों के उदय में, ये तो निमित्त है, कर्ता तो जीव है, परंतु निमित्त कौन है? कर्म है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है। द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है, मैं चाहे जैसा राग कर सकता हूं, ऐसे राग की स्वामित्व बुद्धि उसके पड़ी है। जब राग का स्वामित्व पना होता है तो उसने अपना स्वभाव मान लिया, उसको तो स्वभाव होगा तो उससे छूटेगा कैसे, उससे भेद ज्ञान करना था राग से, वो उसके नहीं हो रहा क्योंकि उसका वो कर्ता मानकर बैठा है अपने को। पुनश्च शरीराश्रित सर्व शुभाशुभ क्रियाएं, शरीराश्रित यानी शरीर की जो कुछ क्रियाएं, जो जो हम देखते हैं, देख कर चल रहे हैं, इस तरह से वो विहार कर रहे, इस तरह से खड़े खड़े भोजन ले रहे, आदि जो देह की क्रियाएं हैं, वो पुद्गलमयी कही है क्योंकि देह पुद्गल है, शरीर पुद्गल है और उसकी क्रियाएं भी पुद्गलमय है। द्रव्यलिंगी उन्हें अपनी जानकर उनमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। तो ये जो मुनि योग्य जो आचरण कर रहा है, उसके योग्य जो क्रियाएं कर रहा है, समिति आदि का जो पालन कर रहे हैं, तो जो शरीर की क्रिया वो मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है। पहला पॉइंट क्या लिया था? राग मैं करता हूं, कर्म के निमित्त का न मानकर वो मेरे करने से होता है माना, और दूसरी बात शरीर की क्रिया का मैं करता हूं माना, दोनों ले लिए उसने। पुनश्च सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे, ये जो महाव्रत आदि जो परिणाम महाव्रत जो उसने धारण किए है, तो ये शुभ भाव है, तो किसके कारण है वो, उससे आश्रव होगा कि आश्रव मिटेगा, बंद होगा कि अबंद होगा? अशुभ भाव से बंद होगा, आश्रव और बंद होगा। द्रव्यलिंगी शुभ भावों को संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण मानता है, यानी उसने जो द्रव्यलिंग मुनि दीक्षा धारण की है और जो उसके शुभ भाव या 28 मूल गुण पालन कर रहा है, वो करते करते संवर, निर्जरा और मोक्ष होगा, ये उसकी मान्यता है। उल्टा ही मान लिया ना उसने। पुनश्च शुद्ध भाव संवर, निर्जरा, मोक्ष का कारण कहा। शुद्ध भाव यानी वीतराग भाव, ये संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण है। उसको द्रव्यलिंगी पहचानता ही नहीं है क्योंकि उसके वो उत्पन्न ही नहीं हुए है और उस संबंधी कोई विचार भी नहीं उसका। पुनश्च शुद्धात्म स्वरूप मोक्ष कहा, उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान नहीं है, यानी मुंह से तो कहेगा परंतु उसका सही भाव भाषण उसको नहीं हो रहा। इस तरह अन्यथा साधन करता है तो शास्त्रों का क्या दोष। पुनश्च तुमने तिर्यंच आदि के सामान्य श्रद्धान से कार्य सिद्धि कही, क्योंकि तिर्यंचों के तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है वहां, तो उनके तो बस भाव भाषण हो गया तत्वों का और उनके सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई, परंतु उनके भी अपने क्षोभक्षम के अनुसार विशेष का जानना होता है, अथवा पूर्व पर्यायों में विशेष का अभ्यास किया था उस संस्कार के बल से होता है। पूर्व पर्याय में यानी कोई मनुष्य पूर्व भव में शास्त्रों का अभ्यास किया था, हो सकता है किसी परिणाम वश तिर्यंच आयु का बंध हुआ है और वहां जाए और जाने के पश्चात वहां सम्यक तो प्राप्त किया है, तो वहां भी कुछ विशेषों का जानना उनका रहता है। ये जो संस्कार के बल जो कहा ना, इसको दूसरा नाम है धारणा, धारणा में जैसे अपने बचपन में कोई एक बात देखी थी, जैसे मेरी बात करूं, मैं तो तीसरी स्टैंडर्ड में थी तो मैंने वो बाहुबली का महामस्तक अभिषेक देखा था, तो ये बातें अपनी धारणा में अभी भी चल रही है। धारणा में जो है वो कभी भी वो स्मृति में आ सकती है कालांतर के बाद भी, तो इसको हम धारणा कहते हैं, परंतु उसी को यहां संस्कार कहा है। और ये जो संस्कार के कारणभूत जो वहां ज्ञान हुआ था उसको धारणा कहते हैं। ये धवला में बात आई थी। धारणा किसको कहना कि धारणा ऐसा ज्ञान है जो हम कहते ना बिल्कुल फॉर्म ऐसा इंप्रेशन कि कालांतर के बाद स्मृति में आ सकता है, उसी को वो संस्कार कहा। यानी ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में वो जानने की धारा चलती है, भले वो स्मरण में कभी आ सकती है। उपयोग रूप है ऐसा नहीं कह रहे हो, क्योंकि लब्धि उपयोग मिलकर भावेंद्रिय कहलाते। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में उसका ज्ञान चलता है। जैसे हमने बचपन में वो स्टैंजा पढ़े थे ना आपने, तो 2 2 2 2 4, तो याद है कि नहीं याद है? जब कभी चाहे आप याद कर सकते हैं। तो वो धारणा में चल रहा है, उस संस्कार में चल रहा है, उसकी बात यहां हो रही है। परंतु ये संस्कार का नाम सुनकर हम ऐसा ही कहते हैं, अभी तो हम बस पढ़ेंगे और ये संस्कार से हमें आगे भव में काम करेंगे, अभी हमें सम्यक्त्व की कोई जरूरत नहीं, संस्कार तो डालो। उनके लिए कहते कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वो संस्कार विस्कार से कुछ नहीं होता, क्योंकि संस्कार से ही बात करेंगे तो मिथ्यात्व के संस्कार तो अनादि से पड़े हैं, तो वो संस्कार बलवान हो जाएंगे। संस्कार से ही सब कुछ होता हो और वर्तमान पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता हो, तो ऐसा कहने वालों के लिए फिर वो अभाव की बात करेंगे। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, कौन सा अभाव होता है? हाँ, याद करो, बता दिया इन्होंने, आपको याद है? प्राग भाव, प्राक यानी पूर्व का, और आगे वाले में प्रध्वंसा भाव। जिस प्रकार किसी ने कहीं कहीं यानी किसी जगह पर गड़ा हुआ धन पाया, हम सुनते हैं ना, कोई घर का काम कर रहा था, खोद रहा था, वह उसने नीचे जमीन में उसको कोई ये मिल गया, ऐसा गड़ा हुआ धन। इसलिए हम भी ऐसे ही पाएंगे मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। हम व्यापार नहीं करेंगे, हम भी खोदते रहेंगे, जब हमको मिल जाएगा तो हम उसको, ये तो सबको नहीं मिलता है कहते। उसी प्रकार किसी ने अल्प श्रद्धा, ये गड़ा हुआ धन का ही क्यों यहाँ दृष्टांत दिया? पहले धन कमाया था और गाड़ा था और फिर कालांतर में उसको मिला है, अभी इसने कभी पढ़ा ही नहीं है और कहते हैं हमको भी ऐसे संस्कार से काम हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार किसी ने अल्प श्रद्धा से ही कार्य सिद्ध किया, इसलिए हम भी ऐसे ही कार्य सिद्ध करेंगे मानकर सभी को विशेष अभ्यास का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है, यह रेगुलर रास्ता नहीं है कहते हैं। राजमार्ग तो यह है कि नाना प्रकार के विशेष जानकर, यानी जितना हो सके अपने से उतने अधिक डिटेल्स जानकर, तत्वों का निर्णय होने पर ही कार्य सिद्धि होती है। ये जो समय दर्शन की प्राप्ति होती है वो तत्वों के निर्णय से ही होती है, और तत्व निर्णय करने के लिए हम जितने विस्तार में उसको जानेंगे उसका सही हमें भाव भाषण होने लगता है। पुनश्च तुमने कहा मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना बन सके उतना ही अभ्यास करो। जितना बन सके यानी मान लेते 20%, 10% जो कुछ बने उतना तो करो। आगे बहुत अच्छा बता रहे, देखो तुम पाप कार्य में तो प्रवीण हो दुनियादारी में बहुत कुछ वस्तु लेनी है, खरीदी करनी है, तो उसके सारे डिटेल्स जानेंगे, वो कहाँ मिलती है, किस भाव से मिलती है। हाँ, गुरु की भी जरूरत, अच्छा सारे संस्कार लेके आया है तुम पाप कार्य में तो प्रवीण हो और इस अभ्यास में कहते हो मेरी बुद्धि नहीं है, यह तो पापी का लक्षण है। बहाने बना रहे,
प्रवीण का अर्थ समझ में आया?
प्रवीण है कुशाग्र, एक्सपर्ट हो।
एक समझ नहीं रहे तो कुशाग्र,
पूछना कोई भी शब्द अड़ता है तो। हाँ, हम तो क्या रोज की तरह से आगे बढ़ते हैं। इस तरह द्रव्यानियोग के पक्षपाती तो इस शास्त्र के सन्मुख पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया, यानी कर्णानियोग पढ़ने के प्रति उसको जागृत किया, सन्मुख किया उसको। अब अन्य विपरीत विचार वालों को समझाते हैं। पहले चार अनुयोगों में से करणानुयोग को छोड़कर अन्य तीन पक्षपाती वालों की बात की। अब अन्य जो है उसको यहाँ कहते हैं। वहाँ शब्द शास्त्रादि का पक्षपाती कहता है कि शब्द शास्त्रादि कहने साहित्य के बारे में कि कोई कविता सीखो, न्याय सीखो, अलंकार सीखो, यानी लिटरेचर के अब पहले अभ्यास करो कहने वाला
एक्सपर्ट।
हाँ, व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्यादिक, ये समझ में आता है? व्याकरण का क्या कहते तुम? ग्रामर। हाँ, यानी ग्रामेटिक तो वो सारा अभ्यास करो उसका, न्याय की बातें यानी लॉजिक आदि का सब अभ्यास करो। ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयमेव ज्ञान होता है और पंडितपना प्रकट होता है। और इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान हो और पंडितपना विशेष प्रकट न हो, इसलिए शब्द शास्त्रादि का अभ्यास करना, यानी वो दुनिया में पंडित कहलाना चाहता है ना, उसका प्रयोजन क्या है? आत्मार्थी नहीं है वो, धर्मार्थी नहीं है, अन्य कोई प्रयोजन है उसका। उसको कहते हैं, यदि तुम लोक में ही पंडित कहलाना चाहते हो तो तुम उसी का अभ्यास किया करो, और यदि अपना कार्य करना चाहते हो तो ऐसे जैन ग्रंथों का अभ्यास करना ही योग्य है। तथा जैनी तो जीवादिक तत्वों के निरूपक जैन ग्रंथ है, उन्हीं का अभ्यास होने पर पंडित मानेंगे। क्या कहते हैं जैनी लोग? पंडित किसको कहेंगे? जो इतिहास के प्रोफेसर को कहेंगे के गणित के प्रोफेसर को कहेंगे क्या? कोई बहुत बड़ा साहित्यिक है उसको? वो तो जैन ग्रंथों के अभ्यास करने वालों को पंडित कहेंगे। पुनश्च वह कहता है, मैं जैन ग्रंथों का विशेष अभ्यास करने के लिए ही व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूँ। वो कहेगा, मैं प्राकृत का, संस्कृत का, व्याकरण का अभ्यास कर रहा हूँ। क्यों? मुझे जैन ग्रंथ अच्छी तरह से समझ में आ सके, इसलिए। उसको कहते हैं, यदि ऐसा है तो भला ही है। पहले उसको थोड़ा आश्वासन देते हैं, परंतु इतना है कि जिस तरह चतुर किसान, देखो दृष्टांत भी कैसा अच्छा दिया है, चतुर किसान अपनी शक्ति से, शक्ति के चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार हलादिक द्वारा, ये हल क्या होता है सुना है? हाँ, यानी जिसको नांगर कहते हैं मराठी में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लो। हाँ, प्लोइंग कहते हैं। तो चतुर किसान अपनी शक्ति के अनुसार हलादिक द्वारा थोड़े बहुत खेत को संवार कर, अभी अकेला किसान है, उसके पास जमीन तो बहुत बड़ी है, तो पूरे वो हल चलाते रहेगा तो साल भर में भी पूरी नहीं हो जाएगी। तो उसकी जितनी शक्ति है उतने को संवार कर योग्य समय में बीज बोवे। अभी वो हल ही चलाता रहेगा, बरसात आके चली भी जाए तो भी बीज नहीं बोएगा तो कोई काम की नहीं, भले इतनी उसकी जमीन है। तो जितनी उसकी शक्ति है उतने को उस खेत को संवार कर योग्य समय पर बीज बोवे तो उसको फल की प्राप्ति होगी। उसी तरह तुम भी अपनी शक्ति के अनुसार व्याकरण आदि के अभ्यास से थोड़ी बहुत बुद्धि को सवार कर, वहां खेत को संवारा था, अब थोड़ी बहुत बुद्धि को सवार कर, जब तक मनुष्य पर्याय और इंद्रियों की प्रबलता आदि वर्तते है तब तक उतने समय में। देखो ये तो कोई आयु की तो कोई गारंटी नहीं है कि सभी, जैसे कहते ना बुजुर्ग होकर या बहुत बड़ी उम्र पाकर फिर मरेंगे, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आयु तो हम पूर्वों में बांध के आए हैं। तो जितनी आयु है उसमें मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको देना है हमको? तो तत्व ज्ञान के कारणभूत जो शास्त्र उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक्वादी की प्राप्ति होगी। इसी भव में करने योग्य ये कार्य सुपर मोस्ट एकदम प्रायोरिटी का कार्य, कौन सा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से तत्व निर्णय करना और सम्यक्त की प्राप्ति करना। इससे विपरीत अभी जो दूसरा कोई किसान है उसको बताते हैं। जिस तरह अनाड़ी किसान यदि हलादिक से खेत को संवारते संवारते ही समय खो देगा तो उसको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद किन्न होगा, क्योंकि वो संवारने की मेहनत तो बेकार चली जाएगी, उसके हाथ में तो कुछ फल मिलेगा नहीं। उसी प्रकार तुम भी यदि व्याकरणादिक से बुद्धि को संवारते संवारते ही समय खो दोगे तो सम्यक्त्वादी की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद किन्न हो जाओगे।
यहाँ बुद्धि को संवारते संवारते का अर्थ ऐसा है, यानी अपने बुद्धि का प्रगल्भता, यानी उसको डेकोरेट करना, अनेक अनेक नई बातों को जानना, नॉट प्रदर्शन करना। देखो, कोई जैसा शारीरिक व्यायाम करता है और शरीर को पुष्ट बलवान बनाता है, वैसे विविध विविध विषयों का अभ्यास करके अपने मतलब जिसको बौद्धिक फ्लरिशमेंट कहेंगे, वैसा संवारना यानी उसको संभालना, उसको बढ़ाना। जैसे शरीर को संवारते वो बात नहीं है।
हम तो ऐसे भी कोई लोग देखते हैं, अभी मेडिकल का अभ्यास किया, लॉ का किया, फिर वो इंजीनियरिंग का किया, ऐसे, और लोग भी उसको बहुत सराहना करते हैं, अरे क्या बात है, इतने साल में अभी भी पढ़ रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो पूरी जिंदगी ऐसे ही खो देगा और हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पुनश्च इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। और सुनो, कितने ही जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों से, यानी अपनी भाषा में जो शास्त्र है जो समझ में आ सके, ऐसे आसान भाषा में जो है, उससे वा उपदेश सुनकर वा सीखने से तत्वज्ञानी होते हुए देखे जाते हैं। बिना व्याकरण का अभ्यास किए, बिना साहित्य का अभ्यास किए भी तत्वज्ञानी होते हुए देखे जाते हैं। और कितने ही जीव केवल व्याकरणादिक के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते देखे जाते हैं। और सुनो, व्याकरण आदि के अभ्यास करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करें तो किंचित पुण्य उपजता है। हाँ, शास्त्रों का अर्थ लगाने के लिए थोड़े बहुत पढ़े तो थोड़ा पुण्य हो सकता है, परंतु तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उपजता है। इसलिए भला यही है ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना। इस तरह शब्द शास्त्रादि के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। आगे हमारी आपकी बात है। पुनश्च अर्थ का पक्षपाती कहता है, अर्थ का यानी पैसे कमाना चाहिए वो कहने वाला, अर्थ का, हाँ, इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, हा? सर्व कार्य धन से होते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म उत्पन्न होते, क्योंकि दान भी करेंगे, दानी का नाम होगा उसके भी धन से करेगा। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर उपस्थित होते हैं, विद्वान भी लोग धनवान के पीछे जाते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए धन प्राप्ति का उद्यम करना और उसके लिए जो पढ़ाई करना है वो करना, ऐसे कहते हैं। उसको कहते हैं अरे पापी। ये अलग अलग विशेषण ले रहे हैं। धन कुछ अपने उत्पन्न कराने से उत्पन्न नहीं होता, भाग्य से होता है, पूर्व कर्म के पुण्य कर्म के उदय से धन मिलता है, अभी यहाँ कुछ प्रयत्न करने से मिला ये बात नहीं है। ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। जो पुण्य कर्म बंधे जाते हैं वो ऐसे ग्रंथ के अभ्यास से बंधेते हैं, और वहां तो तू पाप करेगा और मानता है पाप से धन कमाया, परंतु धन जो आता है वो पुण्य कर्म के, वो पूर्व कर्म के उदय से आता है। इसलिए धन प्राप्त होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा, क्या कहना चाहते हैं? यदि मिलना ही नहीं है, भाग्य में है ही नहीं है, तो बिना शास्त्राभ्यास करने से होगा? शास्त्राभ्यास करने से होगा क्या? हाँ, पुण्य का बंध होगा और हो सकता है वो पाप का भी संक्रमण हो जाएगा पुण्य रूप से। इसलिए धन का होना न होना तो उदयाधीन है। उदयाधीन का अर्थ समझ में है? कर्म के उदय के अधीन, डिपेंड्स वो पूर्व कर्म के उदय पर। शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होते हो? और सुनो, धन है वह तो विनाशिक है। हमने देखा एक भूकंप आता है और वो तो दौलत सारी समाप्त होती देखते देखते। भय संयुक्त है क्योंकि न जाने कब छोड़कर चला जाए। पाप से उत्पन्न होता है और नरकादि के कारण है, क्योंकि ये जो परिग्रह के प्रति अति असक्त भाव है तो वो तो नरक नरकायु नरक गति के बंध का कारण। और यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है। अभी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तो कोई लूट नहीं सकता हमसे। भय रहित है, धर्म रूप है और स्वर्ग मोक्ष का कारण है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उससे ऐसा पुण्यबंध सहज होता है। इसलिए महंत पुरुष तो धनादि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगते हैं और तुम पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन उत्पन्न करने की बढ़ाई करते हो, सो तुम अनंत संसारी हो। कितना स्पष्ट रूप से बता दिया। अपना समय हो गया, अभी यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अमोल।